हरे कृष्णा,
बोलना तो बच गए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आपको श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद 19वां अध्याय का श्लोक 18 पढ़कर सुनाएंगे। इस तात्पर्य में और श्लोक में इतना महत्वपूर्ण संदेश है कि आप इस श्लोक की चर्चा एक महीना कर सकते हो। कुछ करोगे पर समय का भाव है। बोर्ड में लिखा हुआ है अध्यात्मिका श्रवण नाम संकीर्तन चेन संगेना श्रवण नाम संकीर्तन चा में संगेन निरंक्रियाया तथा आध्यात्मिकश्रवण नाम संकीर्तन च में निरंक्रियाया तथा आध्यात्मिकश्रवण नाम संकीर्तन चा में संगेन निरंक्रियाया तथा।
शब्द अर्थ आध्यात्मिका आध्यात्मिक बातें अनुश्रवणात् सुनने से नाम संकीर्तनात् पवित्र नाम के संकीर्तन से च तथा में मेरा आर्जवेन सरल आचरण से आर्य संगेन साधु पुरुषों की संगति से निरहंक्रियया अहंकार रहित तथा इस प्रकार क्षमा कीजिए भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बातें ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो किंतु वह ईर्ष्यालु ना हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है।
दुराई अनुवाद।
भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बातें ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो किंतु वह ईर्ष्यालु ना हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना होता है। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी ना करे, विषय जीवन से दूर रहे और जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुएं ही अपने पास रखे। वह ना तो आवश्यकता से अधिक भोजन करे, ना आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र करे, सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप ना करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को ना अपनाए। केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करे जिनसे वास्तविक प्रगति हो सके। भगवत गीता में 18 गुण बताए गए हैं जिनमें से सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को ना तो गर्व करना चाहिए, ना अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए, अमानित्वम अधम्मित्वम अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए, उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहां पर और साथ ही भगवद गीता में भी हुआ है। मनुष्य को प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। ऐसा उपदेश आचार्य से ग्रहण करने चाहिए और उनको आत्मसात करना चाहिए। यहां पर नाम संकीर्तन का विशेष उल्लेख है, अर्थात मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन या तो अकेले या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक उन्नति के मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन पर विशेष बल दिया है। एक अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त है आर्जवेद, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निस्संदेह धर्म उपदेशकों को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए कभी कभी समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे। एक अन्य आर्य भी शब्द प्रयुक्त है। आर्य वे व्यक्ति हैं जो कृष्ण चेतना में प्रगति करने के साथ ही भौतिक समृद्धि में भी उन्नति करते हैं। आर्य तथा अनार्य या असुर सुर तथा असुर के बीच जो अंतर है वह उनकी आध्यात्मिक प्रगति के स्तरों में अंतर है। ऐसे व्यक्तियों की संगति वर्जित है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। भगवान चैतन्य का उपदेश था असत संग त्याग। जो लोग नाशवान वस्तुओं के प्रति अनुरक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करो। असत वह है जो भौतिक दृष्टि से अनुरक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है तथा स्त्रियों या भोग्य वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार ऐसा व्यक्ति अप्रिय पात्र है। भक्त को अपनी कमाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। भक्त के लक्षण है उसे विनयशीलता तथा सहिष्णुता। भले ही वह आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, वह सदैव विनीत तथा सहिष्णु बना रहता है। जैसा कि कविराज गोस्वामी तथा अन्य वैष्णवों ने अपने उदाहरणों द्वारा हमें शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी कि मनुष्य को रास्ते की घास से भी अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे ना तो गर्व करना चाहिए, ना झूठे ही फूला रहना चाहिए। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से प्रगति कर सकेगा।
हरे कृष्ण। सब ध्यान से सुना। आने वाला तात्पर्य है, कोई महत्वपूर्ण संदेश रह गया है? मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में सारे पॉइंट डाल दिए। ओम ज्ञान श्री चैतन्य मनोवेश जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री रूपा सद्वैतं समनुभूतं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु तप्त कांचन गौरांगी वंचा कल्पत जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का उच्चारण भगवान कपिलदेव कर रहे हैं और कपिला देव जी के विषय में आप ज्ञान कौन से स्कंद में प्राप्त करते हो? जैसे कपिला देव भगवान के अवतार हैं, उनकी माता का नाम क्या था और माता पिता का? क्योंकि माता ने इस अध्याय के आरंभ में प्रश्न पूछा। अब भागवत में देखते हो कि अनेक भक्त प्रश्न पूछते हैं और फिर भगवान उनके पास उत्तर देते हैं, क्वेश्चन आंसर। जैसे आप इम्तिहान की जब तैयारी कर रहे होते हो तो क्वेश्चन आंसर किताबें खरीदते हो, तो भगवतम भी एक प्रकार से प्रश्न और उत्तर है। इस अध्याय में तो देवभूति ने बेटे से पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ही ऐसी शिक्षा दो कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान के शरणगत हो सकूं। आपने संख योग का सिद्धांत तो दे दिया है, पिछले अध्यायों में संख योग का ज्ञान आप प्राप्त करते हो, पर आप मुझे भक्ति योग का ज्ञान दो। ये था किसका प्रश्न? देवभूति का। और देवहूति ने आगे कहा, ये ज्ञान प्राप्त करके ही मैं आपके प्रति ज्यादा आकर्षित हो सकूंगी। तो देवहूति ने प्रश्न पूछा, देवहूति ने कहा है तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, तुम्हारे द्वारा मुझे असली ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर भगवान कपिलदेव ने माता के प्रश्नों के उत्तर में भक्ति योग का सिद्धांत दिया। एक तो भगवान स्थापित कर चुके हैं कि जो भक्त है भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करता है, और इस आर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। आगे जाकर कपिलदेव भगवान भक्ति योग की महिमा का ज्ञान दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि भक्ति योग का पालन आप अलग अलग भाव में कर सकते हो, निष्काम भाव में, साकाम भाव में। और आज के श्लोक में क्या कर रहे हैं? आज के श्लोक में कपिलदेव भगवान अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से अनुवाद तात्पर्य के हर महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करो तो आपको एक महीना लग जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक रूप से और अनुवाद में अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। सबसे पहले भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि हमें सदा आध्यात्मिक विषयों का श्रवणम करना चाहिए। भागवतम के अनेक श्लोक हैं जिनमें यही भाव दिया जा रहा है, क्या श्रवणम। और अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की गिनती करो तो मेरे ख्याल से कम 90% तात्पर्य में इस विषय पर बल दिया जा रहा है। कल हम वृंदावन में क्लास दे रहे थे प्रीतु महाराज के ऊपर, और प्रीतु महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा, जैसे कि देवभूति ने पूछा था। केवल अंतर यह है, देवभूति ने प्रश्न पूछा है कपिल देव भगवान से, प्रीतु महाराज ने पूछा था कुमारराज से। उत्तर में कुमारराज ने श्रवणम कीर्तनम पर बल दिया। तो ये भाव भगवतम में शुरू से अंत तक आप सुनते आते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कपिल देव भगवान के द्वारा कि हमें आध्यात्मिक विषयों का श्रवणम करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, जो कि उन्होंने माता के घर में नारद मुनि द्वारा प्राप्त किया था। और इस नवदा भक्ति में प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पारसेनम आचरण मंदिरम दर्शनम आत्मनिवेदनम। तो कपिल देव भगवान कह रहे हैं हमें आध्यात्मिक विषयों का श्रवणम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें कृष्णा कथा में रुचि लेनी चाहिए, और कृष्णा कथा में रुचि लोगे तो क्या किस कार्य से बचोगे, प्रजल्पा। फिर आप प्रजल्पा से बचोगे। रूप गोस्वामी जी श्री उपदेश्वर में तुम्हें क्या कहते हैं, प्रजल्पा या मांगरा। प्रजल्पा के पालन से भक्ति जो है नष्ट हो जाती है, रुक जाती है। तो आगे कपिला देव भगवान क्या कह रहे हैं, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। इस अध्याय के आरंभ में देवभूति ने एक प्रश्न तो ये था, भक्ति योग की शिक्षा दीजिए। आगे उन्होंने ये भी पूछा, समय के विषय में ज्ञान दीजिए। तो समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है, और समय हर चीज को नष्ट कर देता है। आज आपका ध्येय खूबसूरत है, समय कल क्या करेगा, इसी खूबसूरत शरीर को खूबसूरत बना देगा। आज आपके शरीर में ताकत है, कल यही शरीर कमजोर बन जाएगा। आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कैसिस क्ले मोहम्मद अली, जो वर्ल्ड का बॉक्सिंग चैंपियन था, बीमार था, मृत्यु हो गई। तो समय हर चीज को नष्ट कर देती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समय का हमें बड़े ध्यान से उपयोग करना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा है क्या, आयुष्य कशा न एक पीना लबाया स्वर्ण कोती भी। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए भक्तों का भाव होता है कि हमें समय का उपयोग करना चाहिए, किस लिए, भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में यहाँ कपिल देव का कह रहे हैं कि हमें समय का उपयोग करना चाहिए भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए। श्रवणम कीर्तनम का अर्थ क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण करना और सुनना, भगवान की कथा की प्रजल्प की चर्चा करना और सुनना। श्रवणम कीर्तनम में जितना समय देंगे उतनी ही तेजी के साथ हृदय की जो मैल है वो भी दूर होगी। तो इसलिए अब भगवतम के अनेक श्लोकों में यही संदेश सुन रहे हो। क्या कारण है, क्या कारण है कि बार बार व्यासदेव जी चाहे प्रथम स्कंद पढ़ रहे हो या बारहवें स्कंद इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। कारण यह है कि हम बार बार सुनने पर भी भूल जाते हैं। हमारा क्या नियम है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। तो इसलिए बार बार हमें शास्त्रों में याद दिलाया जाता है। जैसे आज के श्लोक में कपिला देव जी कह रहे हैं कि अध्यात्म विषय का श्रवण करो और समय का उपयोग करो। किस लिए समय का उपयोग करो, किस लिए, भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा के अनेक साधन हैं, तो ये सेवा आरंभ होती है किस कार्य से, श्रवणम और कीर्तनम जीव के द्वारा। कई बार भक्त पूछते हैं हम क्या सेवा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेवा हम सबके लिए है माला का जाप, कृष्ण कथा की रुचि। माला का जाप करेंगे, कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो खुद ही खुद जिंदगी मैल दूर होगी। आगे कहते हैं, आगे कपिला देव क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि हमें कूटनीति से बचना चाहिए। जो भक्त है उसे कूटनीति से बचना चाहिए। भक्त का जो व्यवहार है कैसा कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये नहीं कि आप राजनीतिक रूप से चर्चा करो। कपिला देव भगवान हमें हर विषय का ज्ञान दे रहे हैं। इस श्लोक में कहते हैं डिवोटी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर गलती की भी है तो स्वीकार कर लो कि गलती की है और कूटनीति का कूटनीति से बचोगे तो भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ सकोगे। आखिर हम जब भक्ति में जुड़ते हैं हमारा भाव क्या रहता है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। तो तो कपिला देव भगवान कह रहे हैं कूटनीति से बचो, आगे सारा जीवन बिताओ। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे हमारा सिद्धांत क्या है, सादा जीवन और ऊंचा विचार। और भौतिक वातावरण में क्या है नियम, ऊंचा जीवन सादा विचार। कर्जा लो, लूटो, झूठ बोलो, पर नई मोटर होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छे वस्त्र होने चाहिए, ऊंचा जीवन सादा विचार। विचार किस विषय में रुचि है, केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य में रुचि है। पशुओं के समान पशु जो हैं केवल इसी विषय का भाव रखते हैं, पर भक्तों का भाव है सादा जीवन और ऊंचा विचार। सादा जीवन बिताओगे तो सरलता के साथ जी पाओगे। अगर ये भाव रहेगा कि हम भी ऊंचे से ऊंचा जीवन बिताएं तो सारा समय चल जाएगा केवल धन इत्यादि इकट्ठा करने में। तो इसलिए कपिला देव भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहो। आखिर देवभूति माता का प्रश्न क्या था कि भक्ति योग की शिक्षा दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि भक्ति योग में मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए, जैसे कि परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए। तो कपिला देव भगवान देवाहूति के माध्यम से हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। ये नहीं कि आपने पहले कभी इस विषय इस विषय पर ज्ञान नहीं सुना, पर हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। तो भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि स्टे फॉर रहो और सादा जीवन बिताओ, सादा जीवन बिताओगे बिना चिंता के या अधिक चिंता के आसानी से जी पाओगे। आगे क्या कहा है, आगे बचो द्वेष और ईर्ष्या से। द्वेष और ईर्ष्या के कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। श्रीमद् चैतन्य चरितमृता में आप सर्वभौम भट्टाचार्य की कथा पढ़ते हो, बड़े ऊंचे भाव के बड़े प्रसिद्ध मायावादी थे, पर चैतन्य महाप्रभु जी की संगत से और कृपा से वैष्णव भक्त बन गए। उनके एक दामाद थे अम्भोगा, जिनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो एक समय सर्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी महाप्रभु के लिए बहुत बड़े भंडारा का प्रबंध किया था और सर्वभौम भट्टाचार्य वो चाहता नहीं था कि अम्भोगा आकर देखे कि क्या क्या अर्पण किया गया है चैतन्य महाप्रभु को, और इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य खुद लकड़ी लेकर दरवाजे में खड़े रहते थे कि अम्भोगा को देखने का मौका नहीं मिले क्या क्या खिलाया जा रहा है। एक दिन उन्हें वो स्थान छोड़ना पड़ा पति का सहयोग करने में, अम्भोगा ने देख लिया इतना बड़ा भंडारा, भक्त प्रेम से भंडारा बनाते हैं, महाप्रभु केवल सन्यासी होते हैं थोड़ा सा ही स्वीकार करते थे। तो अम्भोगा ने देखा इतना बड़ा भंडारा महाप्रभु के टेबल के सामने टेबल पर, अम्भोगा कहने लगा देखो ढोंगी सन्यासी सन्यास ले लिया है और खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। इस अम्भोगा को थोड़ी देर बाद कॉलरा की गहरी बीमारी हो गई। महाप्रभु को जब सूचना प्राप्त हुई कि अम्भोगा को एक कोढ़ की बीमारी है, तो उसे देखने आए। महाप्रभु ने कहा जब तक ईश्वर द्वेष रहेगा हृदय में, जब तक भगवान वहां नहीं रहेंगे, जैसे कि अगर कोई गंदा स्थान हो तो आपको वहां बैठना अच्छा लगता है नहीं लगता, तो द्वेष ईर्ष्या से हमें बचना चाहिए। और ईर्ष्या द्वेष से बच सकते हो अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो। सो यहाँ यह कहा जा रहा है क्या, ईर्ष्या से बचो। आगे क्या, सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। जो भक्त है सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है। कपिलदेव भगवान ने भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है और कहते हैं इस विषय में, तितिक्ष्वा करुणिकाः सूरदा सर्वा नहीं नम, आगे सर्वा साधु भूषण। जो भक्त है सूरदा सर्वा दहीनम, सबका मित्र है। जो उसकी निंदा करे आलोचना करे उसका भी वो मित्र है। और यहां कहा जा रहा है कि भक्त में मित्रता का भाव होना चाहिए, सबके प्रति मित्रता का भाव। ये भाव हम सबको अनुकूल करना चाहिए, मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का एक और अर्थ यह है कि भक्त का सदा ये भाव रहता है कि बच्चीवों को भगवान का संदेश दिया जाए, सबका सुधार हो। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते थे, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मुझे उनकी चिंता है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब में मित्रता का भाव होना चाहिए, और जो वैष्णव भक्त है उसके सारे संबंध होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। मित्रता का भाव का ये अर्थ नहीं कि हम एक दूसरे का सहयोग दें इंद्रिय तृप्ति के कार्य में। साधारण समाज में हम किसको मित्र मानते हैं? जो हमारा सहयोग दे रहा है किसी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में। आध्यात्मिक भाषा में मित्रता का भाव अर्थ है जो कि हमें सहयोग देता है भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। तो असली मित्रता का भाव वो है सबको भगवान का उपदेश देना। और अगर हम देखें कि कोई भगवान के शिक्षा के आधार पर नहीं चल रहा तो प्रयास करें उसकी अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो जो भक्त हैं वो ना तो ईर्ष्या द्वेष रखता है और सबके प्रति मित्रता का भाव। आगे क्या, अभक्तों की संगत से दूर रहो। संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन पर, इसलिए संतों ने इस विषय पर बल दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। भक्तों की संगत में रहना चाहिए और किसकी संगत से बचना चाहिए? सत्संग त्याग वैष्णवाचार। चेतन चेतन भी तुम्हें कहा गया है भक्तों की संगत से दूर रहो। चेतन महाप्रभु ने पांच महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की, और सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? साधु संग नामा कीर्तन। साधु संग में रहोगे तो नाम हरि नाम की महिमा का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उन्नत भक्तों की संगत में रहे। ध्रुव महाराज की तपस्या से परम भगवान बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें? भगवान के लिए कोई वर देना असंभव है, नहीं, मांगो। और ध्रुव ने क्या मांगा? अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उन्नत भक्तों की संगत में रहूं, भक्तों की संगत में रहूं, ये वर मुझे चाहिए। प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। उनका केवल एक ही दोष था, भगवान के प्रति उनका आकर्षण था। उनको पहाड़ की चोटियों से फेंका, जेल सांपों ने घेरा इत्यादि। तो जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया था तो भगवान ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए? प्रहलाद ने क्या कहा? अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा भक्तों की संगत में रहूं, भक्तों की संगत में रहूं। तो हम यहाँ कपिले देव भगवान कह रहे हैं अभक्तों की संगत से दूर रहो और भक्तों की संगत में रहो। इसी तीसरे स्कंध में कई अध्याय पीछे देवहूति ने पूछा था, ये बताओ कि किस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और भगवान ने कहा भक्ति योग के माध्यम से। आगे माता ने पूछा भक्ति योग कैसे प्राप्त होगा, और बेटे ने कहा कि क्या कहा, साधु संगत के द्वारा। तो इस विषय की चर्चा शास्त्र में की जाती है बार बार। चैतन्य चैतन्यता में क्या कहा गया, कौन सा वो प्रसिद्ध श्लोक, साधु संग सर्वसा लाभ मात्र साधु संग, लाभ मात्र। जैसे आज इस कौन संस्था के लगभग 650 केंद्र हैं सारे विश्व में, और जैसे आप जानते हो ये साल हम इस्कॉन की सुवर्ण जयंती भी मना रहे हैं, 50th एनिवर्सरी। और ये 50th एनिवर्सरी के संबंध में इंग्लैंड में ये भूमि पूजा हुई थी नए मंदिर के लिए, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए थे। तो अगर आप देखो, प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका केवल 40 रुपए के साथ 50 साल 51 ईयर्स अगो, और ये संस्था कैसे बड़ी साधु संघ के माध्यम से। प्रभुपाद जी तो गए थे अकेले, वो पहुंचे बड़ी कठिनाई के साथ न्यूयॉर्क। कल न्यूयॉर्क में रथ यात्रा थी, प्रभुपाद जी ने टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में जाकर कीर्तन करना आरंभ किया। ऐसे ऐसे भक्त बने, प्रभुपाद जी खुद प्रचार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, फिर उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, एक को इंग्लैंड भेज दिया, एक को लॉस एंजल्स भेजा, एक को किधर भेजा, अब प्रचार करो। साथ में प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ भी है साधु संघ। साधु संघ हम दो रूप से प्राप्त करते हैं, भक्त साधु की संगत, ग्रंथ साधु की संगत। आप कई बार पूछते होंगे क्या कारण है ये हरे कृष्ण वाले हर साल मैराथन करते हैं, हर साल हमें कहते हैं ग्रंथ बांटने में सहयोग दो वगैरह, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान, जब हम इस ज्ञान को पढ़ते हैं तो इसके द्वारा आध्यात्मिक जागृति होती है। तो अगर आज आप हजारों भक्त देख रहे हो हर स्थान में, दो तीन दिन पहले मैं द्वारका मंदिर में था शाम को लेक्चर देने, वहाँ लेक्चर में कम से कम 800-900 भक्त थे। अगले दिन हम थे गुड़गांव में, वहाँ भी हॉल पूरा भरा हुआ था, आपके पंजाबी भाग में भी हॉल भरा हुआ। आज सुबह मंगल आरती में संत नगर में पूरा मंदिर भरा हुआ था। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ये बताने के लिए कि साधु संघ प्रचार करोगे, ग्रंथों का वितरण करोगे, ग्रंथों को पढ़ोगे, तो उसके द्वारा आध्यात्मिक जागृति भी बढ़ेगी। तो शास्त्र में बार बार कहा गया है, आप देख सकते हो कि शास्त्र का जो संदेश है ये सच है। प्रभुपाद जी तो अकेले गए थे 70 साल की आयु में, सबने प्रभुपाद जी को बोला अमेरिका मत जाओ, इस बुरी उम्र में जाओगे मर जाओगे, पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि गुरु का आदेश है तो प्रयास करना चाहिए। पर साधु संगत के माध्यम से ही ये भक्त बने, साधु संगत के माध्यम से ही भगवान का प्रचार बढ़ा। तो हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं कि आप अपना काम नहीं करो, बिजनेस नहीं करो, कीजिए, पर ऐसा नियम बनाओ, ऐसी योजना करो कि हफ्ते में एक बार दो बार मंदिर आ सको, भगवान का दर्शन ले सको। कपिल देव भगवान ने ये भी शिक्षा दी है, भगवान के भक्त भगवान के आचर्य विग्रह का दर्शन लेकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि हमें सबके प्रति मित्रता का भाव, और प्रभुपाद जी ने कई बार कहा जो आप कहीं आपकी निंदा भी करें उसके प्रति भी क्या भाव रखो, मित्रता का भाव। बहुत एक समाज में किसी के प्रति मित्रता का भाव नहीं रहता, और मित्रता का भाव रहे भी जब तक रहता है जब तक हमें कुछ लाभ मिले, अगर कुछ लाभ नहीं मिलता तो तलाक, हाँ, डाइवोर्स, जुदा। पर जो भक्त है वो हर स्थिति में मित्रता का भाव रखता है, और अभक्तों की संगत कम करो उतना ही रखो, अभक्तों की संगत जितना कि आवश्यक हो, रहो कहाँ, भक्तों की संगत में। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, हमें प्रमाणिक भक्तों के द्वारा श्रवणम करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ इस व्यक्ति का बड़ा मधुर कंठ है, अनूप जलोटा, इसके भजन हमें सुनने चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रमाणिक भक्तों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उनके द्वारा जो भगवान का संदेश शुद्ध रूप से दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथा रूप दी, भगवद गीता का संदेश बिना किसी भाव को जुड़े हुए। तो हम इसीलिए प्रमाणिक भक्तों द्वारा ग्रंथ सुनते हैं, पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जब आप तात्पर्य पढ़ते हो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, तो इस तात्पर्य में केवल प्रभुपाद का ही नहीं, जो महान आचार्यों का भाव था वो भी प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते थे या डिक्टेट करते थे, अपने सामने रखते थे ठाकुर भक्ति विनोद जी का तात्पर्य, भक्ति सिद्धांत जी का तात्पर्य, श्रीधर स्वामी का तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य, सबको पढ़ते थे, उनके विचारों को प्रभुपाद जी समझते थे और फिर सरल भाषा में आगे प्रस्तुत करते थे। तो इसीलिए कहा गया है, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें प्रमाणिक प्रतिनिधियों द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और आगे का क्या है, भक्ति की विधियों का पालन करो और इंद्रियों को वश में करो। कई बार सुनने में आता है इसका संसार में तो बहुत से बंधन है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, है सच बात है। कई बार ये भी लग सकता है हम कहां फंस गए, इतने बंधन है। भक्ति रस अमृता सिंधु जिसकी रचना रूप गोस्वामी जी ने की है, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, मंदिरों का निर्माण करने के लिए, उन स्थानों को खोजने के लिए जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो भक्ति रसमृता सिंधु में अनेक नियम हैं। प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, हर भक्त को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अनेक नियम हैं, जैसे हम चार नियमों का प्रचार करते हैं इत्यादि। तो ये जो नियम है किस लिए, इनका जब हम पालन करते हैं तो भक्ति के कारण बन जाते हैं, और जब हम इनका पालन नहीं कर पाते हैं तो वो बंधन का कारण बन जाते हैं। और अगर हम जाप श्रवणम कीर्तनम करें तो श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम के सहयोग से इन विधियों को भी हम वश में करें, इन विधियों का पालन कर सकते हैं। तो आगे कहा गया है इंद्रियों को वश में लाओ। तो चाहे आप नए भक्त हो या पुराने भक्त, सबने इंद्रियों को वश में लाने का प्रयास करना है अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहो। अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा। ये तो भी नहीं कर सकते, हमें भौतिक सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी, ये संभव है। अगर आध्यात्मिक सुख चाहिए तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा। ब्राह्मण को एक परस पत्र प्राप्त हुआ था, जो कि उसे एक वर प्राप्त हुआ था, सबसे कीमती वस्तु प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने देखा ये परस पत्र से हर चीज सोना बन रही थी। तो फिर किसी ने उसे पूछा ये परस्पर कहा कैसे प्राप्त हुआ, तो उसने पूरा ज्ञान दिया कैसे प्राप्त हुआ। तो कहाँ पड़ा था, कचरे के डब्बे के नीचे, तो जरूर इससे ज्यादा कीमती कोई वस्तु होगी। और जब संत ने कहा वो कीमती वस्तु चाहिए, कहा पहले ये परस पत्थर फेंको फिर मिलेगा। तो जब हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो जो प्रतिकूल कार्य है वो त्यागना ही पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे कि इस प्रकार भगवान के शरणागत होना। और इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने पहले क्या छह नियम दिए। पहला नियम क्या था, जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करो। तो इस श्लोक में कपिला देव भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं ये सब हमारे लिए अनुकूल हैं। मित्रता का भाव, भक्तों की संगत, द्वेष से बचना, ईर्ष्या से बचना, समय का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, ये उदाहरण हैं उन कार्यों के, क्योंकि भक्ति के लिए क्या है अनुकूल है। और भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या माना जाएगा, शरणों के दिन में रुचि नहीं लेना, शरणों के दिन हम किस सभी पर जल पकड़ना, समय का दुरुपयोग करना, द्वेष ईर्ष्या रखना, सदा यही भाव रखना कि हम सबसे अच्छे हैं, ऐसा भाव रखना, यह है भक्ति के लिए प्रतिकूल। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो प्रतिकूल है वो त्यागो, अनुकूल है उसे स्वीकार करो। यहाँ कपिलदेव भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं उन भावों का, उन कार्यों का जो कि अनुकूल है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं इंद्रियों को भी वश में लाओ और उतना ही प्रयास करो जितना कि आवश्यक है खाने पीने के लिए। लालच की कोई सीमा है, श्रीमद् भगवतम के आठवें स्कंद में आप वामन देव की कथा पढ़ते हो कि वामन देव जी पहुंचे थे बाली महाराज के महल में, बाली महाराज यज्ञ कर रहे थे, बाली महाराज बड़े प्रभावित हुए उनकी खूबसूरती को देखकर। तो बाली महाराज ने पूछा भांगो मेरे से क्या वर चाहिए, वामन देव ने कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो उतना वर दीजिए कि मैं उतना स्थान दीजिए जहां मैं कितने कदम रख सकूं, तीन कदम। और बाली महाराज ने कहा तुम निर्दोष बालक नजर आते हो, मेरे पास पहुंचकर इतना छोटा वर और मांगो, मैं तो पूरा लोक तुम्हें दे सकता हूं, ये क्या है। तो इसके उत्तर में वामन देव ने क्या कहा, भूखा व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है भोजन खिलाकर, प्रसाद खिलाकर, प्यासा व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है पानी पी के, क्रोधित व्यक्ति भी संतुष्ट हो सकता है। आप कभी कभी क्रोधित होते हो किसी पर तो थोड़ा दो मिनट चिल्लाते हो ठंडे हो जाते हो, पर लालची व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है कभी नहीं संतुष्ट हो सकता। तो यहां तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं उतना ही प्रयास करो जितना कि आवश्यक है और उससे अधिक है तो भगवान की सेवा में लगाओ, ये नहीं कि हम इसे छोड़ दे जाएंगे। जितना रखोगे उतना कर्मा उठाना पड़ेगा। एक समय जगन्नाथ दास बाबा जी को कोई उठा कर जा रहे थे टोकरी में, किसी ने उन्हें एक रुपये दिया, एक रुपये उन्होंने लिया, फिर उस व्यक्ति को जाकर जिसने दान दिया था वापस कर दिया। जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा मैं तो एक रुपए का बोझा भी नहीं उठा सकता, तुम इतने रुपए का बोझा उठा रहे हो कैसे। तो जब हम धन रखते हैं अपने लिए तो वो एक प्रकार का बाहरी बोझा होता है और वो बोझा का टैक्स हमें ही भरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेहतर है भगवान की सेवा में उपयोग करो। तो यहाँ कहा जा रहा है उतना ही प्रयास करो जितना आवश्यक है, और पिछड़ता से बचो। इस विषय की चर्चा हम कर बैठे हैं। रूप गोस्वामी ने कहा प्रजल्पा से बचो। प्रजल्पा से बचना है तो किस विषय में रुचि बढ़ानी पड़ेगी? कृष्ण कथा में। ये संभव नहीं कि आप प्रजल्पा भी करो कृष्ण कथा भी करो। अगर प्रजल्पा में रुचि है तो कृष्ण कथा में रुचि घट जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति आए आपके पास प्रजल्पा करने के लिए, आप उसे कह सकते हो प्रभु जी मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रजल्पा से बचना चाहता हूँ। तो आगे जाकर भगवद गीता में पापा जी भगवद गीता के गुणों का वर्णन करते हैं। आप भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान गुणों का वर्णन करते हैं, और यहाँ पापा जी कह रहे हैं अहंकार से बचो। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हमें विनम्रता का भाव हो। एक राजा थे उड़ीसा के, महाराज प्रताप रुद्र। बड़ा प्रयास किया उन्होंने महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए, नहीं कर पाए। जब महाप्रभु ने देखा रथ यात्रा के शुभ अवसर पर महाराज प्रताप रुद्र राजा होते हुए भंगी का कार्य कर रहे थे, सड़क को साफ करना, धोया गुलाब के पानी से, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए कहा गया है अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो विनम्रता का भाव और साथ में सहनशील, विनम्रता और सहनशील, फिर आप सदा हरि का नाम भी ले सकोगे। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने क्या संदेश दिया है? क्या संदेश दिया है? तिनादपि तरोरपि अमानिना केतना दे सदा। अगर तुम सदा, आप ऐसे कितने भक्त हो जिनकी ये हार्दिक इच्छा है कि आप सदा कृष्ण का नाम लो, ये तो शुद्ध भक्तों की सभा है, सब ये चाहते हैं सदा हरि का नाम लो। तो महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया है? अगर तुम ये चाहते हो कि महाप्रभु की कृष्ण का नाम लो सदा, तो क्या भरना पड़ेगा? सहनशील होना पड़ेगा, थोड़े से भी ज्यादा सहनशील। और क्या, अपने आप को पतित मानो, घास से भी ज्यादा पतित। दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। ठाकुर भक्ति विनोद शरणागति में कहते हैं दूसरों को आदर दो और कि उसके बदले में आदर की उम्मीद मत रखो। तो ये भाव यहाँ का भगवद गीता में भी है। भगवद गीता में कहा गया है जो भक्त भगवान के शरणागत होना चाहते हैं उन्हें अहंकार से बचना है। ये नहीं कि हमें आदर दो तो ही हम सेवा करेंगे। कई बार मन में ये भाव होता है हम सेवा करेंगे पर हमें आदर भी चाहिए साथ में, और आदर नहीं मिलेगा हम यहाँ सेवा नहीं करेंगे। ऐसा भाव आता है कभी? नहीं आता तो अच्छा है, पर कई बार आता भी है। तो भगवद गीता में कहा गया है भक्तों के गुणों के विषय में कि भक्त को अहंकार से बचना चाहिए, सबको आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। ये है चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश। महाप्रभु ने अपने भक्तों को तो आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, पर स्वयं महाप्रभु केवल 8 श्लोक छोड़ गए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो जिसमें पूरे वैदिक शास्त्रों का सार आपको प्राप्त होता है, पूरे वैदिक शास्त्रों का। तो भगवद गीता में कहा गया है कि गुणों में भक्त के लिए एक गुण यह है कि वो आदर दे और किसी आदर की बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं रखे। आगे अहिंसा, किसी को कष्ट नहीं देना, चींटी को भी कष्ट नहीं देना। जत भारत की कथा में आप पढ़ते हो कितने सावधानी से वो चलते थे, देखते थे आगे 3 कदम तक कोई चीटी तो नहीं है। और चैतन्य चरितमृत में अपने गाड़ी शिकारी की कथा पढ़ते हो, कैसे एकदम भयंकर शिकारी नारद मुनि की संगत में आने से उनका उद्धार हो गया और ये भाव त्याग दिया। ये है साधु संघ का प्रभाव। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अहिंसा का भाव होना चाहिए भक्त में। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरि नाम के जाप में हमें रुचि बढ़ानी चाहिए। हरि नाम में रुचि बढ़ेगी अगर हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे। कई बार पूछा जाता है हमारे से, ये टेस्ट कैसे हम बढ़ाएं, रुचि कैसे बढ़ाएं? और क्या है उत्तर? रुचि बढ़ेगी प्रयास है। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना है आपने? जितना अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा योग्यता प्राप्त होगी। उसी प्रकार जितना जाप करोगे उतनी रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी का मतलब है आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी और भौतिक कार्य में रुचि घटेगी। आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और भौतिक जीवन बदसूरत। अगर हम शरणम कीर्तनम नहीं करें तो क्या परिणाम है इसका उल्टा? भौतिक जीवन खूबसूरत बन जाता है, आध्यात्मिक जीवन बदसूरत। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें परिणाम में रुचि लेनी चाहिए, भक्तों की संगत में रहना चाहिए और विनम्रता का भाव। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कृष्णदास काविराज और गोस्वामियों का उदाहरण दे रहे हैं। कृष्णदास काविराज ने हमें क्या, कौन सा ग्रंथ दिया था? कृष्णदास काविराज कहते हैं, मेरे में इतने अवगुण हैं, मेरा अगर तुम नाम मिलोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा नाम भी मत लो। और हमारी क्या स्थिति है? नाम नहीं लोगे तो मतलब हम गुस्से हो जाते हैं। तो कृष्णदास काविराज कहते हैं, मैं नाम भी मान लो। वृंदावन के गोस्वामी रूप और सनातन का समाज में बहुत ऊंचा स्थान था, पर दोनों ने सरकारी नौकरी त्यागी और महाप्रभु के आदेश के अनुसार वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो कहाँ था उनका निवास का स्थान? रोज अलग अलग पेड़ के नीचे, कोई रहने का ठिकाना नहीं था, कोई मधुकरी करके जी रहे थे। हालांकि एक समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। उस समय के सबसे धनी खानदान के इकलौते पुत्र थे और उन्होंने सब कुछ त्यागा और वृंदावन आए। तो प्रभु जी तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्णदास काविराज और गोस्वामी कैसे उन्होंने विनम्रता का भाव प्रकट किया। तो जब हम सुनते हैं हमारे में भी प्रेरणा आती है कि हम भी ऐसे भाव अनुकूल करें। तो इसलिए श्रवणम बहुत आवश्यक है। अगर हम श्रवणम करेंगे ध्यान से तो प्रचार का उत्साह भी होगा। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा प्रभुपाद के विषय में, ये लड़का बहुत ध्यान से सुनता है और एक दिन वो उत्साह से प्रचार करेगा। तो श्रवणम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भागवत में भी कहा गया है, नस्त प्रवेशो भद्रेशु, श्लोक है। अगर ध्यान से भागवत सुनोगे, अगर आपको समझ नहीं भी आए, सुनने से ही ये प्रभाव होगा, आपका हृदय जो है साफ हो जाएगा। इसी प्रकार महामंत्र के उच्चारण से क्या लाभ है? चेत दर्पण मान लेना, यह हम सबका अभ्यास है। अगर आज आप देखते हो विश्व के कोने कोने में लोग हरि नाम ले रहे हैं, ये सब कैसे संभव हुआ? प्रभुपाद जी तो अमेरिका गए थे केवल हरि नाम को लेकर, हरि नाम को लेकर और श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्थान, और हरि नाम के माध्यम से ही लोग जुड़े। आप सब जो जुड़े हो हरि नाम के माध्यम से ही जुड़े हो, तो आप अनुभव कर सकते हो क्या शक्ति की शक्ति है हरि नाम में और शास्त्र में। प्रधानमंत्री जब लंदन आया था परसों, हरे कृष्ण बोला, तो ये हरि नाम जो है महामंत्र है। कली कली नामा रूपा कृष्ण अवतार, भगवान अवतारित हुए हैं हरि नाम के माध्यम से। तो आज के श्लोक और तात्पर्य में अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है, मैंने तो केवल संक्षेप रूप से इनकी चर्चा की। अगर आप इस श्लोक और तात्पर्य के हर मेन पॉइंट को डिस्कस करना चाहो तो आप और एक महीना एक ही श्लोक कर सकते हो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। भगवान कपिला देव ने भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम सबके लिए आवश्यक है और इसमें हमारे हमारा ध्यान रहना चाहिए। और भक्तों की संगत में चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा की, दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें सूचना मिल गई थी सर्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा कि वहाँ एक महान संत मिलेगा जिनका नाम है, तो किदारवी नदी के तट पर वहाँ इस्कॉन का एक सुंदर केंद्र भी है, मिले थे महाप्रभु रामानंद रॉय से। तो अनेक प्रश्न पूछे जिनमें एक प्रश्न था सबसे कठिन स्थिति क्या है, और रामानंद रॉय ने कहा और भक्तों की संग, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना। तो जब हम भक्तों की संगत से जुदा हो जाते हैं तो ये बड़े दुख की स्थिति है। कई बार जब हम भक्तों की संगत में होते हैं हम इसके महत्व को नहीं समझते, तो जब हम भक्तों की संगत में होते हैं हम ज़्यादा नुक्स ढूंढते हैं, देखो इसमें ये नुक्स है ये नुक्स है ये नुक्स है। पर जब हम भक्तों की संगत से जुदा हो जाते हैं, अगर हम श्रद्धालु हैं, फिर हमें लगता है नहीं नहीं भक्तों की संग में रहना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन केंद्र बनाए हैं सारे विश्व में, आपको सारे विश्व में, विश्व के किसी कोने में चले जाओ, मौका मिलता है भक्तों की संगत प्राप्त करने का। और भक्तों की संगत में रहोगे तो यही सुनोगे हरि नाम की महिमा, यही सुनोगे शास्त्र की महिमा, यही सुनोगे श्रवणम कीर्तनम। और इस विषय में हम सबको रुचि बढ़ानी चाहिए, और श्रवणम कीर्तनम में रुचि बनाएंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और माया के प्रति, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, अधो श्रद्धा तथा साधो। शुरू में हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। जब ये श्रद्धा हो, ये भावना हो, भगवान क्योंकि अंतर्यामी हैं, समझ आते हैं किस प्रकार की भावना है इस भक्त में। और अगर आपके मन में ये भावना हो कि आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो, तो फिर क्या क्या परिणाम होता है? अलो श्रद्धा तथा साधु, साधु की संगत मिल जाती है। ये संगत मिलती है ग्रंथ के रूप में या भक्त के रूप में, अनेक उदाहरण हैं। किसी को एक ग्रंथ मिला रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, किसी दुकान में, वो ग्रंथ पढ़ने से उसका जीवन सुधर गया। तो ये है साधु संघ का प्रभाव, और साधु संघ के द्वारा ये शिक्षा मिलती है हरि नाम करो। कई मैं कईयों को मिला हूँ जो भक्तों को मिलने से पहले उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया था केवल क्योंकि उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा था। तो जब आप भजन क्रिया करते हो, जिसका अर्थ है जाप करना, शास्त्र पढ़ना इत्यादि, फिर क्या परिणाम होता है? अनर्थ निवृत्ति। जो हमारे शत्रु हैं, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, इनको आप दूर कर सकते हो। तो बार बार सुनोगे शास्त्रों का संदेश तो इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप सबको ये प्रयास भी करना चाहिए कि आप कम से कम हफ्ते में एक दो बार आओ भगवतम क्लास के लिए भी। आप में से कितने भक्त हो जो मंदिर आते हो भगवतम क्लास के लिए? ओके। क्या आपका पंजाबी बाकी क्लास इंटरनेट पर भी जाती है? तो कहीं शायद सोचते होंगे घर में आराम से सोफा सेट में बैठ कर देंगे सुनेंगे क्लास। अगर आप मंदिर में आना चाहो तो इंटरनेट में क्लासेस का ये एक लाभ भी है और नुकसान भी है। लाभ ये है कि हर व्यक्ति सुन सकता है घर बैठे बैठे भी। नुकसान ये है कि कई बार हम आलसी बन जाते हैं, मंदिर जाने की क्या जरूरत, घर बैठे बैठे क्लास सुनना। खैर, भगवत क्लास सुनो। और आप में से कितने भक्त हो जिनके पास भागवतम का सेट है घर में? तो अगर सेट घर में है तो कृपा करके सेट को पढ़िए, सजाने के लिए मत रखिए। प्रथम स्कंद से शुरू कीजिए एक श्लोक में। तो आज का श्लोक था तीसरे स्कंद का 29वें अध्याय का 18वां श्लोक। आप अगर और ध्यान से पढ़ना चाहो इस श्लोक को ध्यान से पढ़िए और जो शिक्षा है उसका पालन कीजिए। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? यस। क्लास बहुत लंबी हो गई।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जब हमारी लंबे समय तक हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे को, तो हमारा उत्साह कम हो जाता है, और उत्साह कम होने के कारण हमारी डिवोशनल सर्विस कम हो जाती है नहीं चाहते हुए भी, और हमारी शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है और वैष्णव अपराध करते हैं हम। तो ऐसे इसको कैसे समझे, हम इसको कैसे करना चाहिए हमारे को?
हेल्थ की प्रॉब्लम तो सबको होगी, आज नहीं तो कब। पर ये नहीं कि हेल्थ की अगर प्रॉब्लम है तो हम भक्ति में रुचि घटाएं। उल्टा, जब हेल्थ की प्रॉब्लम आती है हमें सोचना चाहिए हाँ ये सच है तो खा ले हम, मुझे ऐसी योजना बनाने दो कि मैं भगवान के धाम जा सकूं। जैसे कुंती महारानी कहती है, हे भगवान मेरे कष्टों को बढ़ाओ, कष्टों को बढ़ाओगे तो मैं आपका ज्यादा स्मरण करती हूँ, और ज्यादा स्मरण करूंगी तो उतनी जल्दी ही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलेगा। तो ये नहीं हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हम घबरा जाएं। एक समय भक्त प्रभुपाद जी को कह रहे थे, आप विश्राम कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और कहा, प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। तो भगवान के लिए कठिन स्थिति में सेवा करना ये बहुत बड़ा भाग्य है। अगर भगवान के लिए संघर्ष करना पड़े ये तो बड़े भाग्यवान व्यक्तियों को ही मौका प्राप्त होता है। भाग्यवान व्यक्तियों को ही भक्तों की भगवान की सेवा का मौका मिलता है, हर व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। असली अरबपति करोड़पति कौन है? असली करोड़पति वो व्यक्ति है अपने मन तन धन से भगवान की सेवा कर रहा है। जो व्यक्ति अपना धन स्विट्जरलैंड और बहामा में रख रहा है वो असली धनी व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये टेबल जा आगे।
हरे कृष्ण।
पूछिए।
हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज आपने इसमें एक लाइन है कि डिवोटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, चाहे मेटीरियल है स्पिरिचुअल है।
तो असल में ये भगवान कपिला देव कह रहे हैं, जो भी मैंने कहा वही हमने तो तोते जैसा आपको आगे सुना दिया। तो ये कपिला देव जी कह रहे हैं, कपिला देव कह रहे हैं डिवोटी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
उसमें समटाइम्स जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का प्रयास करते हैं मेटीरियल और स्पिरिचुअली, तो समटाइम्स रिलेशन खराब होने का डर होता है, और रिलेशन खराब होने से कई बार द्वेष और ईर्ष्या ना चाहते हुए उत्पन्न हो जाती है। तो उस चीज को कैसे टैकल करें?
बिजनेस में हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना शायद संभव नहीं हो। जैसे आप कहोगे आपसे मैं ज्यादा नफा नहीं कमा रहा, अगर कमा रहे तो भी तो प्रभा जी गीता में कहते हैं ये अपराध नहीं है, तो वो पुरानी भाषा है। पर भक्तों के व्यवहार, एक दूसरे के साथ व्यवहार में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और भगवद गीता में जब जीव की तपस्या की चर्चा की जाती है, भगवान कहते हैं एक तपस्या जीव की ये है टू बी ट्रूथफुल, कि हमें झूठ बोलने की इतनी आदत है कि ट्रूथफुल होना बहुत भारी बोझा बनता है। आजकल तो हमें झूठ बोलने की इतनी आदत है ना, सच अगर सच बोलना पड़े तो हमको लगता है एक भारी बोझा है। तो आपका क्या प्रश्न था? होने नहीं चाहिए, अगर होते भी हैं तो हमारा प्रयास रहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का। पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मीठे रूप से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने किसी को सुधारना है, हाँ आप चिल्लाकर भी सुधार सकते हो प्रेम से भी। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्पीक वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल बट इन अ पैलेटेबल मैनर। गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, तो पैलेटेबल रूप से करोगे तो आप कोई गलती नहीं कर रहे। अगर दूसरा व्यक्ति बुरा बन जाएगा क्योंकि आपने सच बोला तो आप क्या कर सकते हो? राइट। और जब भी कोई चिंतक कोई प्रॉब्लम हो तो सीनियर भक्त के सहयोग से उसे सॉल्व कर देना। ओके, मोर क्वेश्चंस? यस, you can ask questions in English also, no problem. Okay.
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी जैसे इसमें परपट में बताया गया कि हमें धन का संग्रह नहीं करना चाहिए,
हमें
धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, धन को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम में है तो कुछ हमें फ्यूचर्स के लिए जैसे करना पड़ेगा, जैसे बच्चों की मैरिज करनी है, कुछ करनी होती है। हाँ। या फिर हम कई बार कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप अगर गृहस्थ आश्रम में हो सबको धन कमाने का पूरा अधिकार है, और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो धन को जोड़ भी सकते हो। हम ये नहीं कह रहे बेटियों की शादी के लिए मत जोड़ो या कुछ, पर अगर आप कमा रहे हो तो कमाई का थोड़ा हिस्सा भगवान के चरणों में भी दे दिया करो। बस इनकम टैक्स स्पिरिचुअल टैक्स। हम ये नहीं कहेंगे धन मत, जो सन्यासी हैं और ब्रह्मचारी हैं उन्हें धन जोड़ने का अधिकार नहीं है, पर जो गृहस्थ हैं उन्हें छूट दी गई है।
थैंक यू महाराज।
मोर क्वेश्चंस? जल्दी जल्दी, अभी 10 बज गए।
गुरु महाराज दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। एक्चुअली एक हमारे हैप्पी प्रभु जी हैं जो सेक्टर 25 से कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने 650 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी रोज एक भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मेट्रो में, तो मैंने उनसे इंस्पायर्ड होके लास्ट वीक से मैंने भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी स्टार्ट की, और मैंने 3 भगवद गीता तो गुरु महाराज और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे को कुछ सलाह दें या कुछ अपना विचार दें कि जिससे मैं और अच्छे से भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं।
जब आप प्रचार करने जाओ मन में यही सोचो, आपका भाव है पतितों का उद्धार करना, भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान आपको निमित्त मात्र बना रहे हैं प्रचार करने के लिए। ये मैं सोचना, मैं ज्यादा ग्रंथ बांटना चाहता हूँ कि कल सब ताड़ी मारेंगे। खैर वो भाव ही रखो तो चलेगा। किसी प्रकार से इस सेवा में जुड़े रहो। और जिस प्रचार से पहले जप माला करो अच्छी तरह।
लास्ट क्वेश्चन महाराज, आपने कहा कि भक्तों को नॉन वायलेंट होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो दूसरों के लिए पेनफुल होते हैं।
नॉन वायलेंट का ये मतलब नहीं, अगर आप कुछ गलती कर रहे हो उसे सुधारा नहीं जाए। चैतन्य महाप्रभु ने भी छोटा हरिदास के विषय में हमें शिक्षा दी। तो नॉन वायलेंस का मतलब यह है कि हम किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं दें। तो ये नहीं कि अगर हमने कोई कमी देखते हैं और हम उस कमी को सुधारे नहीं तो हम उस व्यक्ति के दुश्मन बन जाते हैं। पिता पुत्र का दुश्मन बन जाता है जो कमजोरी को नहीं सुधारे। गुरु शिष्य का दुश्मन बन जाता है जो वो शिष्य की कमजोरी को नहीं सुधारे। पर हमें प्रेम से सुधारना चाहिए। एनी मोर क्वेश्चन?
महाराज, जैसे देखते हैं कि मंदिर में विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं और उसमें से अधिकतर बल दिया जाता है संकीर्तन पर और पुस्तक वितरण पर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो अगर कोई किसी दूसरी कोई सेवा में लगा हुआ है तो क्या ऐसा है कि जो पुस्तक वितरण कर रहा है और संकीर्तन कर रहा है उसका शुद्धिकरण ज़्यादा होगा और कोई दूसरी प्रकार की सेवा में है?
एक रूप से प्रभुपाद ने भी कहा है सारी सेवाएं महत्वपूर्ण हैं और प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, पर हर व्यक्ति में हर सेवा की योग्यता नहीं होती। तो जिनमें योग्यता है वो ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं, जिनमें दूसरी सेवा के लिए योग्यता है वो सेवा कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते अगर आप ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तो आप नहीं जुड़ सकते इस काम के साथ।
अगर योग्यता दोनों में है मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तो उसको प्रेफरेंस?
कई भक्त हैं जिनके पास योग्यता लगभग हर सेवा में है रहती है, तो उन भक्तों को थोड़ी ज्यादा कृपा मिल जाती है, मतलब ज्यादा सेवा। आप देखते हो कई भक्त हैं जिनके पास 24 घंटे में 28 घंटे की सेवा है, और कई भक्त हैं जिनके पास 24 घंटे में 4 घंटे की सेवा है। तो दोनों वैरायटी है, सम हु आर ओवरवर्क्ड, सम हु आर अंडरवर्क्ड। All right. Okay, any more questions? No more questions? Okay.
परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की, महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश हम सबके लिए।